संतप्त मानस शांत हूं जिनके गुणों के गान में समय सार परमागम की 193वीं गाथा चलाई थी। पंडित जयचंद जी ने भावार्थ में इस गाथा के भाव को जो खोला है उसे पढ़ने के लिए अपन ने कल कहा था। ये इसके पेज नंबर 144 पर है समय सारण फिलन में। ये जो अभी गाथा का पाठ होता है ना, वो कलशों का पाठ बहुत ही मार्मिक है। इसमें आप जितना आनंद ले सकते हो उतना आनंद हमारे प्रवचन में भी नहीं होगा, क्योंकि ये तो मूल आचार्य की बात है। ये नहीं कि हमने वो पद्यानुवाद किया है, बल्कि वो आचार्य की बात है। और ये तो अपनी कमजोरी के कारण कोई उसका जोर कम हुआ होगा, कोशिश तो की कि जोर कम नहीं हो, लेकिन कलशों में खासकर कितनी जोर की कलश आते हैं। अंत में आपने 5-6 कलश पढ़े और अंत में एक दोहा और पढ़ लिया करें, जितना पढ़ा ना एक दोहा और पढ़ दूं, निष्कर्ष का है वो कि क्रिया कांड से नाम ले यह आत्म अभिराम, ज्ञान कांड से सहज ही सुलभ आत्मा राम। ये तो ऐसा है, संस्कृत का काव्य में भी यही बात लिखी है। और अपने घर पे ऐसा लिखा कर जहां पर सोते हो ना, यदि आंख खुले तो वहां पर लिखाने लायक है, खासकर उन लोगों को जो जिनमें क्रियाकांड में ज्यादा रस हो जिनका। ये अमृतचंद्र का वाक्य है, भगवान महावीर की वाणी में से आया हुआ वाक्य है। ऊपर की जितने अपन ने कलश पढ़े वो बहुत एक से एक मार्मिक है। अब अंधे जगत के प्राणियों, कितना बढ़िया विशेषण दिया अपने को है? क्या मान कर तुम सो रहे है ना है? जागो जागो इधर आओ, है ना, उसमें बहुत अच्छे शब्द है। संस्कृत में भी बहुत बढ़िया शब्द है इसके लिए। हिंदी का पाठ तो सब इसलिए कराते हैं कि जिसमें आपको एक एक कली हर एक को खिलती जाए। भले ही आप लोग संस्कृत पढ़ते हो लेकिन संस्कृत में वो मास्टरी नहीं आ सकती जो हिंदी में होनी चाहिए और है। कारण क्या है कि जो बोलने की भाषा होती है आदमी में उसी में मास्टरी होती है। ये विश्व का भाषा विज्ञान का नियम है, कोई भी व्यक्ति पे दो भाषाओं में मास्टरी नहीं हो सकती। ये नियम समझ लो, वो कितने ही विशेषज्ञ हों दूसरी भाषा के, वो एक ही भाषा में विशेषज्ञ होते हैं। और वो कौन सी भाषा होती है आप कह सकते हो? मातृभाषा नहीं, वो भाषा होती है जिसमें आप सोचते हैं। सोचने का काम हमेशा एक भाषा में होता है। जब आपको दूसरी भाषा बोलनी पड़ती है तो सोचते हैं मान लो हिंदी में, फिर उसका अनुवाद करके आपको गुजराती में उसमें बोलना पड़ता है। इसलिए वो दूसरी भाषा हमेशा कमजोर रहती है, वो असली भाव उसमें नहीं आता है। समझ में आया ना? अब मैंने एक मातृभाषा क्यों नहीं कहा, ये क्यों कहा कि जो भाषा में हम सोचते हैं वो भाषा ही हमारे पे मास्टरी होती है। उसका कारण ये है कि जब हम आजकल जैसे बचपन से ही हमारे बच्चे कॉन्वेंट में पढ़ने लगते हैं ना, तो वे अंग्रेजी में ही सोचने लगते हैं। दिक्कत ये है, फिर जब बाद में वो हिंदी पढ़ते हैं तो हिंदी में उन्हें अनुवाद कर करके बोलना पड़ता है। मां बाप से भी वे पूछेंगे सिनेमा जाना है तो उनके सोचने का जो वाक्य होगा मन में वो अंग्रेजी में होगा, फिर भले ही मां बाप के आग्रह से उसे अनुवाद करके हिंदी में बोलेंगे। आप लोगों के भी मैं देखता हूं जो कर्नाटक से और वहां से आए हैं लड़के, वो भी धीरे धीरे यहां 5 साल में हिंदी में ही सोचने लगते हैं। और जब वे अपनी मातृभाषा में बोलते हैं ना तो उन्हें सोच सोच के अनुवाद करना पड़ता है। अन्ना जी मुझे बताते हैं कि उनकी कन्नड़ और मराठी बिगड़ गई है। अब वहां को वहां वाले भी कन्नड़ और मराठी वाले भी उनसे हिंदी में बोलने का आग्रह करते हैं। शांति जी की भी यही हालत है। तो मतलब यह है कि आप ये चाहते हो कि हम सारी जिंदगी जिस भाषा में सोचें उस भाषा पे आपको वजन देना चाहिए, इसलिए कहता हूं। और इसके लिए मैं आपको थोड़ा मार्गदर्शन करना चाहता हूं, किस भाषा का निर्णय करें। हर एक को अपनी मातृभाषा का लोभ रहता है ना। पंडित टोडरमल जी पर मैंने जब शोध की थी तो उसमें एक प्रश्न सामने आया था कि टोडरमल जी ने की भाषा ढूंढारी है जैसा सब लोग कहते थे, और हमने सिद्ध किया था कि वो ब्रज भाषा है, ढूंढारी नहीं है। हमारे प्रोफेसर के सहयोग से, इसके भाषा विज्ञान के बहुत बड़े मास्टर थे, वो बहुत विशेषज्ञ थे, तो उनने एक बात मुझे लिखाया था, वो मेरा नहीं है, वो उन्हीं का है, कि टोडरमल जी ने जिस कारण से संस्कृत में नहीं लिखा, संस्कृत के विशेषज्ञ विद्वान होने पर भी क्या, उसी कारण से ढूंढारी में नहीं लिखा, ये वाक्य है उनका। इसका समय सारी गाथा जैसा अर्थ करना पड़ेगा क्या, कि जिस कारण से उन्होंने संस्कृत भाषा में नहीं लिखा, क्योंकि तब तक संस्कृत भाषा में ही लिखा जाता रहा था, हिंदी भाषा का भी बहुत अच्छा स्वरूप सामने था ही नहीं, तो उन्हें क्यों कि टोडरमल जी अपनी बात को अधिकतम लोगों के पास पहुंचाना चाहते थे क्या, अपनी बात को अधिकतम लोगों के पास पहुंचाना चाहते थे, और संस्कृत के समझने वाले भी बहुत कम है हिंदुस्तान में भी, विश्व में तो नहीं, इसलिए उनने संस्कृत में नहीं लिखा। अभी आप सोचोगे अपने संस्कृत में लिखते समय सार अनुशीलन तो कितने लोग पढ़ते इसे, इसलिए उनने संस्कृत में नहीं लिखा, संस्कृत के विशेष विद्वान होने पर भी। और वही नियम ढूंढारी पे, ढूंढारी भी एक प्रदेश की भाषा होने से भले ही जिस एरिया में वो रहते थे उसमें वो ज्यादा बोली जाती हो, लेकिन उन्होंने सारी दुनिया को लक्ष्य में रखकर, क्योंकि किताब एक दिन के लिए नहीं लिखी जाती है, वो प्रवचन करते तो भले ही ढूंढारी में करते होंगे क्या, तो ढूंढारी वाले ज्यादा बैठे रहते होंगे सामने, लेकिन उन्होंने लिखना को हिंदी का मीडियम बनाया, क्योंकि ये भाषा विश्व में अधिकतम लोगों के से बोली जाती है। और टोडरमल जी के जमाने से आज में और इसमें बहुत तरक्की हुई है, क्योंकि उस वक्त तो राजस्थान में मान लो ढूंढारी हो, कहीं जगह मारवाड़ी हो, कहीं जगह गुजराती, कहीं पर बिहारी, अवधी, ये भाषाएं लोकल में बोली जाती थी। अब लिखने जाने की भाषा, अखबारों की भाषा, टीवी की भाषा, ये सब हिंदी ज्यादा हो गई है, इसके बोलने वाले, सुनने वाले, पढ़ने वाले सबसे ज्यादा हैं। विश्व में कितने आदमी हैं, अभी अभी ताजा आंकड़ा आया ना कल परसों का, 7 अरब हो गए। तो विश्व में किसी भी भाषा में 70 करोड़ लोग बोलने वाले नहीं हैं, अंग्रेजी के भी, क्योंकि जिन देशों की वो मातृभाषा है वो देश तो एक ही 1.5 करोड़ के देश है, वो तो हमारी प्रांत नहीं, हमारी जिला से छोटे छोटे हैं। सिंगापुर को 35 लाख का देश था, अब वो 50 का हो गया, समझ लो पूरा देश। तो यहां से लेके बिहार बंगाल से लेकर और यहां पर पूरा गुजरात महाराष्ट्र में, इस सब जगह भले ही गुजराती मराठी बोली जाती हो लेकिन हिंदी और भाषा उतनी ही उससे समझी जाती है, समझने में कोई दिक्कत नहीं है, एक बुजुर्ग महिलाओं को छोड़ दो अकेले। तो आज विश्व के कम हिंदुस्तान में जो 125 करोड़ लोग हैं ना, 125 अरब, उनमें आधे लोग हिंदी भाषा भाषी को भाषा को बहुत अच्छी तरह जानते हैं, उसमें बोला जाए लिखा जाए तो वे पढ़ सकते हैं और सुन सकते हैं। इसलिए न केवल हिंदुस्तान की, ये आज ये विश्व की सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है। इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि आपको हिंदी भाषा में सोचने का अभ्यास करना शुरू करना चाहिए। आपको 5 साल का जो मौका है उसमें हिंदी में ही सोचें और हिंदी में ही बोलें। आपको दूसरी भाषा में भले ही अनुवाद करके बोलना पड़े, कैसे आप संस्कृत में आचार्यों की वाणी है यार, वो तो बहुत बढ़िया है, बढ़िया है, लेकिन क्या करें, वो समझने के लिए संस्कृत समझो और समझाने के लिए हिंदी। संस्कृत नहीं जानोगे तो आचार्यों की बात समझ में नहीं आएगी, संस्कृत ताकत, और हिंदी नहीं जानोगे तो अधिकतम लोगों तक अपनी बात पहुंचा नहीं सकते हो। तो इस दृष्टि से ये बात हमारे ध्यान में आना चाहिए। ये मैंने इसलिए कहा है कि जो कलशों का पाठ करते हैं तो सचमुच मुझे इतना अच्छा लगता है कि मेरा बस चले तो चलने ही दू पूरा घंटा, क्या ये टोकने का मन नहीं करता, क्या बुद्धि कहती है कि बंद करवा दो बंद करवा दो, और दिल कहता है चलने दो। अब ये मत समझना कि जब मैं यहां आता हूं तब मैं घर पे भी उसके पास ही खड़ा रहता हूं स्पीकर के पास, और जब तुम पहला पाठ शुरू करते हो ना, अभी चाहे सुबह जो मेरे आता है टीवी पे उसके पहले पाठ करते हो ना, चाहे 2-4 या 10 गाथाएं ही कर पाते हो, नियम तो 10 मिनट का है, लेकिन क्या करते हो मुझे सब मालूम है, रोजाना उसको भी सुनता हूं, क्या उसमें मुझे ज्यादा रस आता है। तो मैं ऐसे आप लोग उसमें यदि उपयोग लगाएं तो आपको भी वैसा ही रस आने लग जाए, मैं चाहता हूं वैसा रस आने लग जाए। तो आपका ट्रेन में बस में जहां भी आप सफर करेंगे कहीं बैठे होंगे, तो आजकल वो हो गए हैं सब, सबके पास वो सीढ़ियां होती हैं वो चला लेते हैं, तो आप मूल आचार्यों की बात का रसस्वादन कहीं भी कैसी भी हालत में कर सकते हैं। प्रवचन से ज्यादा उपयोग, प्रवचन में तो ज्यादा उपयोग लगाना पड़ता है ना, तो ज्यादा उपयोग लगाओ तो कार चलाते हुए तो एक्सीडेंट हो जाएगा, मैंने वो चलते फिरते में उतना उपयोग लगाने लायक नहीं है। लेकिन इसमें तो क्या है कि एक एक कुंती से अर्थ खुलता जाता है, यदि आपके ऐसा धीरे धीरे आपने उसमें अभ्यास कर लिया है तो बहुत ही मार्मिक है, इसलिए उसको बेकार नहीं समझना चाहिए। हमने इसको रखा है हर जगह, उसका पाठ करते हैं तो हर जगह इसलिए रखा है कि वो विषय वस्तु जो चल रही है वो आपके दिमाग में स्पष्ट होती चली जाए। अब अपन जयचंद जी छाबड़ा का वो पढ़ते हैं, इसके पढ़ने के पहले 2 वाक्य में कहना चाहता हूं कि इसमें गाथा में समझने लायक कुछ नहीं है, कुछ नहीं है माने समझ में नहीं आए ऐसा कुछ नहीं है। सीधी सच्ची गाथा है जिसमें लिखा है कि चेतन अचेतन द्रव्यों का उपभोग अज्ञानी यदि करता है, गाथा और टीका दोनों में, तो उसे बंद होता है, और ज्ञानी यदि उनका उपभोग करता है तब भी उसे बंद नहीं होता है। अब बोलो इसमें क्या बात है जो किसी की समझ में नहीं आएगी, पंडित की क्या जरूरत है इसमें। अब प्रश्न ये है कि ये समझ में आती है लेकिन गले नहीं उतरती, गले इसलिए नहीं उतरती कि वही ज्ञानी को निद्रा के कारण और अज्ञानी को वही बंद के कारण, स्पष्ट लगता है ज्ञानियों के पक्ष में पक्षपात किया गया है, इसलिए ये गले उतरना आसान नहीं है। ये माने जो कहा जा रहा है वो इतना कठिन नहीं है लेकिन गले उतरना कठिन है। अब मैं चंद्राचार्य ने क्या किया, कुंद कुंद की सीधी सरल गाथा है और अम्बे चंद्राचार्य ने उसे न्याय से तर्क से युक्ति से और उदाहरणों से खोला। अब न्याय की भाषा तो जरा कठिन होती ही है, तो ऐसे बड़े बड़े लोगों को ये कहना पड़ा कि भाई इस कुंड कुंड में तो बहुत सीधा सरल है, ये अमृतचंद ने समय सार को कठिन बना दिया। उनकी भाषा में कहो तो समय सार को दुरूह कर दिया। क्या वास्तव में वो बात अमृतचंद ने गले उतारने की, और गले उतारने के लिए अपने शास्त्रों में दो ही बातें मुख्य हैं, युक्ति आगम तो है ही वो, और उदाहरण। जो विशिष्ट विद्वान हैं और विमत वाले हैं उनके लिए युक्तियां खासकर, और जो साधारण बुद्धि वाले हैं उनके लिए उदाहरण। कुंद कुंद के उदाहरण ही पर एक पूरा एक एक पीएचडी हो सकती है, इतने उदाहरण उन्होंने दिए हैं कुंद कुंद ने, और अमृतचंद ने उसमें कुछ बड़ा ही होंगे, कम नहीं किए। तो उन उदाहरणों के माध्यम से उन्होंने उस बात को और युक्ति के माध्यम से खोला है, तो वो इसलिए कठिन लगती है। बात ऐसी है नहीं कि वो ज्यादा उन्होंने कठिन कर दिया है, अब वो हमारी समझ में बात आती ही नहीं, हमारे गले उतरती नहीं और हम पढ़ते रहते हैं। ख्याल में है ना, चाहे पुण्य पाप अधिकार हो और चाहे संबर अधिकार हो, बुद्धिपूर्वक कह रहा हूं मैं नाम ले रहा हूं ये, और नजरा अधिकार हो, इनमें बात समझने की कम और स्वीकृत करने की ज्यादा है। अब इतनी सरल बात है कि अज्ञानी के उन्हीं भोगों से बंद होता है और ज्ञानी के उन्हीं भोगों से निर्जरा होती है, और उन्होंने चेतन और अचेतन ऐसा लिखकर, माने आपको ये गुंजाइश नहीं छोड़ी कि वो भाव भोग की होगी, भावों में आ जाए उसकी बात होगी, क्रिया से कोई लेना देना नहीं होगा। तो चेतन भोग और अचेतन भोग, चेतन भोग अचेतन भोग में क्या फर्क है, जो क्या जानते हो, जैसे जे अपना रोटी दाल जो बिल्कुल अचित्त हो गई, सचित्त सामग्री नहीं है, वो अचेतन हो गया, और अकेला चेतन तो कुछ होता ही नहीं, इसलिए हमने अचेतन और चेतन के मिक्सर को चेतन नाम दे दिया और अकेले अचेतन को अचेतन नाम दे दिया। तो क्या नहीं, स्त्री पुत्र आदि चेतन, गाय भैंस चेतन क्यों है, और पलंग है ये है, ये टेबल है, कुर्सी है, ये अचेतन, ऐसे भेद अपन ने किए। वास्तव में अचेतन तो कहा है जे, ये तो समय साल तो इसे अचेतन ही अचेतन कहता है, लेकिन चेतन भोग क्योंकि सिद्ध भगवान को तो कोई भोगता नहीं है, समझिए ना। और इंद्रिय भोगों की बात विशेषकर इंद्रिय भोगों से होती है, पांच इंद्रियों के भोग, और पांच इंद्रियों के भोग जो तो पुद्गल ही पकड़ में आता है, तो अचेतन में पुद्गल है और चेतन में भी वास्तव में वो पुद्गल ही है। इन दोनों अचेतन और अचेतन के भोग कहकर के उन्होंने उसी चीज को जो पांच पापों में हमारी प्रवृत्ति है उसको ही लिया है। मेरे कहने का मतलब यहां पर वो आध्यात्मिक अर्थ निकालने की कोशिश करने की जरूरत नहीं है, कि चेतन अचेतन का भोग जिसे हम मानते हैं, अरे वो चौथे गुणस्थान में विद्यमान होने पर भी उनके निर्जरा उनकी वजह से निर्जरा नहीं रुकती। जितनी उत्कृष्ट निर्जरा होनी चाहिए चौथे गुणस्थान में, वो नहीं होती है, मान लो पांचवें और छठवें सातवें आठवें नौवें दसवें जैसी, तो भी वो जो निर्जरा रुकी हुई है वो उन भोगों के कारण नहीं रुकी हुई है। जो उनके भोगने का भाव है वो उसके कारण रुकी हुई है, ऐसा होने ना, यानी वे प्राण इंद्री के जो भोग सामग्री है चेतन अचेतन, उसको इस अपराध की शाखा में से बिल्कुल बरी करना चाहते हैं। जब स्वार्थ आता है ना, तो हम बहुत बारीक अर्थ निकालने लगते हैं। वो मदेरना की पत्नी है ना, मदेरना से तो आप समझ जाते हो ना सब, आत्मा से समझते, मदेरना से समझ लो। वो भी जाकर के वहां बोल रही है कि उनने किया तो क्या अपराध किया, भारतीय कानून में कौन से कानून में ये लिखा है कि ये अपराध है? ये तो लिखा है कि कोई किसी से बलात्कार करे तो अपराध है क्यों? जब वो दोनों ही ने माने भमरी ने और उन्होंने राजी से जो कुछ किया है तो अपराध तो होता नहीं, अपराध तो कुछ बनता नहीं। पत्नी कह रही, भमरी कहती थी कि पत्नी को पता चलेगा तो उसके घर से रहना मुश्किल हो जाएगा। आपको भी लगता था कि भमरी सही सोचती थी, लेकिन क्या सोच रही वो उसकी पत्नी? अपराध क्या किया? और उसकी बात सुनते हो कि जिसने खुद राजी से सब कुछ किया वो खुद सीढ़ी बनाई, वो कैसी औरत होगी समझ लो क्या? किसी महिला से किसी के बारे में ऐसा कमेंट से आप सुन सकते हो कोई मिलेगा? मुंदोदरी से भी पूछोगे तो वो भी नहीं इसके लिए तैयार होगी, जबकि उसने बहुत स्वीकार किया था। वो तो सीता को मनाने भी गई थी, ये कम से कम भमरी को मनाने तो नहीं गई। आप कहोगे क्यों आ गई यहां ये बात? इसलिए आ गई कि वो उस चेतन अचेतन की भोगवादी क्रिया को बंध के मामले से बिल्कुल बरी करना चाहते हैं। क्या समझे ना? वो कहते हैं कि आगे कथा आएगी, भोगने से बंध ना पर भोगने से भोगने के भाव से तो बंध होता है। ऐसे कलश में आता कि नहीं आता? इस पाठ में आगे कहीं पीछे होगा। यद्यपि भोगने से बंध ना पर भोगने के भाव से तो बंध होता है ना। वो कहते हैं जब बंध नहीं हुआ और भोग की क्रिया देखी गई, सुनो, तो इससे एक निर्णय निकालना तो सही है कि भोग की क्रिया देखी जा रही है और बंध नहीं हो रहा। ख्याल नहीं ना, भोग की क्रिया देखी जा रही है और बंध नहीं हो रहा। लेकिन वो कहते हैं कि यदि बंध कोई रुका है कहीं, ये तो हो रहा की बात है, तो वो भोग की क्रिया बंद होने से नहीं रुका। अब नेगेटिव समझ में आया कि नहीं आया? भोगने से बंद हुआ नहीं और भोगने की क्रिया से बंद रुका नहीं। ख्याल में आई ना? यानी ये बंद के प्रकरण में परद्रव्य को बिल्कुल बाइज्जत बरी करना चाहते हैं और इसके लिए अपने शिविर में भी ये बात आई थी। तो एक भाई मेरे पास आए थे, प्रश्न किया था उनने कि साहब इसे तो इसका उसको प्रोत्साहन मिलेगा, प्रोत्साहन मिलेगा। अरे भाई तुम क्या सुन रहे हो, ये तो मेरे पास समय नहीं था उस वक्त उसको बात करने का। तो अन्ना जी से मैंने कहा, अन्ना जी से समझाना, मैंने कहा इनसे समझ लेना। अन्ना जी मैंने उनको तो ये कह दिया, लेकिन प्रवचनों में भी वही चलता रहा। उस वक्त तो समय नहीं था, बाद में प्रवचनों में तो समय ही समय है समझाने के लिए, अभी भी वो दिमाग में से निकलता नहीं है। तो ये मैंने एक बात जरूर कहा था कि ये जो परम सत्य है, इस नकली भय से कि लोग इसका वो करेंगे, आप इस परम सत्य का उद्घाटन नहीं होने देना चाहते। खतरा तो ये है कि परम सत्य का उद्घाटन नहीं होगा और ये ऐसा ही मर जाएगा। खतरा ये नहीं है कि लोग उसके भोग भोगने में मस्त हो जाएंगे। अरे जिस नए से ये समझा रहे हैं, जो उस नए से तो कहते हैं उसने भोगा ही नहीं, वो परद्रव्य को भोगता ही नहीं। परद्रव्य का आत्मा करता और भोगता है ही नहीं, वो तो उसकी मर्यादा तो अपनी भावों तक ही है। ये प्रचलन चल रहा है, तो इसका पोषण हो जाएगा, उसका पोषण हो जाएगा। सारे जगत में कुछ पोषण न हो जाए तेरी जिम्मेवारी है। अमृतचंद की नहीं थी, कुंद की नहीं थी, यदि ये सोच लेते तो ये बात रह ही जाती ना। फिर बोलो, माने नकली कल्पना करके ऐसा होंगे तो ऐसा हो जाएगा, कहीं हुआ नहीं है। क्यों? लीलावती की बात सुनकर अब सारे लोग फिर परस्त्री सेवन करने लगेंगे। ख्याल में आई? ऐसा डर बता के वो मानेंगी, वो कहेगी मुझे अभी अपने पति को बचाना है, फांसी पर नहीं चढ़ने देना है, लेकिन ऐसा नालायक पति को चढ़ने दो ना, क्यों नालायक पति को चढ़ने दो ना, जी पे क्या फर्क पड़ता है? नहीं नहीं, तो यहां पर देखो अभी पढ़ते हैं अपन, कहा है जयचंद जी सावड़ा ने एक पेज लगाया इसमें, ये कह रहा हूं मैं बिल्कुल सरल बात है, जिसमें समझाने के लिए कुछ था नहीं, उसमें एक पेज लिखा, वो पूरा पढ़ रहा हूं मैं। सम्यक दृष्टि को ज्ञानी कहा है, पहले तो ये नक्की रख लो यहां, सम्यक दृष्टि माने चौथे गुण स्थान वाला है, वो सम्यक दृष्टि तो सिद्ध भी है, उनको नहीं लिया। और ज्ञानी के राग देश मोह का अभाव कहा है, इसलिए सम्यक दृष्टि बैरागी है। अब इससे सीधा सच्चा अर्थ हो गया कि यहां पर जो राग कह रहे हैं राग देश मोह, वो सिर्फ मिथ्यात्व और अनंतानबंदी क्रोध मान माया लोभ, और मिथ्यात्व और अनंतानबंदी के साथ रहने वाले शोकादि उनमें भी लगा लो, इतनी चीज को यहां पर उन्होंने राग मोह राग देश माना है, बाकी को मोह राग देश में ही नहीं गिना। यदि एक चाबी आपके हाथ में नहीं होगी तो फिर जिंदगी भर उलझे ही रहोगे, ये समाज समझ में नहीं आएगी, और इस बात को आपने मान लिया तो चुटकियों में समझ में आ जाएगी, है ना। यद्यपि उसके इंद्रियों के द्वारा भोग दिखाई देता है, तथापि उसे भोग की सामग्री के प्रति राग नहीं है। अब जब ये कहते हैं कि राग नहीं है, दुनिया कहते कैसे हो सकता है, क्योंकि आज के जो वैज्ञानिक तो ये कहते ही हैं कि भाव के बिना तो शरीर बिल्कुल निष्क्रिय है, पांच इंद्रियों के भोग भाव के बिना भोगे ही नहीं जा सकते हैं, समझे ना, खाने भी सब सब पांच इंद्रियों के जो भोग हैं वो भाव के बिना भोगना संभव ही नहीं है, है ना। तो भोग दिखाई देता है तथापि उसे भोग की सामग्री के प्रति राग, अब राग नहीं है तो फिर वही वो अनंत आनंदी राग लेना। अब यहां हर जगह आपको भाषा तो ऐसी आएगी और आपको उसका अर्थ वो समझना पड़ेगा, है ना। वह जानता है कि यह माने यह भोगों की सामग्री परद्रव्य है और मेरा इसका कोई संबंध नहीं है। अब भोग रहा है, अब क्या कैसा है, भोग रहा है और मेरा इसका कोई संबंध नहीं, खा रहा है और कहता है मेरा इसका कोई संबंध नहीं, समझे ना। कठिन क्यों है समझने में, ये बता रहा हूं कठिन क्यों है। कर्मोदय के निमित्त से इसका मेरा और संयोग वियोग है, कहते इसका भोगने और नहीं भोगने की क्रिया तो मेरे कर्मोदय के निमित्त से है। कर्मोदय के निमित्त से मतलब कि सामग्री प्राप्ति भी कर्मोदय से होती है, अघाध्य कर्म के उदय से, और भोगने की प्रक्रिया भी जो अघाध्य कर्म के उदय में जो मोह राग द्वेष के परिणाम होते हैं, जो अप्रत्यक्षण वर्ण आदि उनके उनके निमित्त से होती है, उनकी अस्वीकृति नहीं है, क्योंकि वास्तव में यदि वो नहीं हो तो वो जो भोग की क्रिया, लोग क्या कहते हैं, मैंने कहा भरत चक्रवर्ती का फिर आ जाता है बेचारा बीच में, के 96,000 शादियां किए जा रहा है साल में, 10-10 बच्चे पैदा किए, 10-10 नहीं सैकड़ों पैदा किए जा रहा है, और वो कहते हैं उसे भोग का कर्ता नहीं है, उसे भोगने का भाव नहीं है, उसे भोगने मान्यता ऐसी नहीं है उसकी, क्या। अब असलियत में ये जो कठिन समस्या है वो सिर्फ चारित्र मोह और दर्शन मोह में क्या अंतर है ये नहीं समझने के कारण है। सबसे ज्यादा गड़बड़ी समझने में तो सम्यक दर्शन के मामले में हुई। अब सम्यक दर्शन की श्रद्धा गुण की पर्याय है, श्रद्धा श्रद्धा श्रद्धा, और श्रद्धा तो कहते हैं कैसे हमारे श्रद्धे पूज्य पिताजी बचपन की इस श्रद्धा, इसको श्रद्धा मानते हैं। वो भिखारी कहता है जितनी आपकी श्रद्धा हो उतना दे दो। अब इस श्रद्धा शब्द का सही अर्थ नहीं समझते लोग, फिर बहुत आगे बढ़ते हैं श्रद्धा भक्ति, जैसी आपकी भक्ति हो, अभी भकारी की हमारी भक्ति होगी, हम तो अरहंत की वचनात्मक भक्ति को भी भक्ति नहीं मानते, जड़ की क्रिया है कहते हैं क्यों, اب شردا سے بھکتی کی طرف چلے گئے, اس کو شردا مانتے ہیں, کیا کرے. جب وہ کہتے ہیں جو تم ارتھ سمجھ رہے وہ تو پیور راستہ ہے, تم وہی سمجھ نہیں آ گئے. اس کا بالکل ایکوریٹ جو ارتھ آج ہم سمجھ سکتے ہیں, جو میں نے وہ شبد چنا ہے اور بہت پریوگ کیا ہے, اور اس کی وجہ سے اب سارے لوگ کرنے لگ گئے ہیں. لوگ اس کو بھول ہی گئے ہیں کہ کس نے چنا ہے یہ شبد, کب چنا, کب سے شروع کیا. اور وہ ہے اپنا اپن, یعنی اپنے آتما میں اپنا پن آنا, یہ واسطو میں شردھا گن کی پریائے ہے اور وہ سما درشن ہے. اور اپنے میں پرایا پن آنا یہ نہیں ہے, کسی بھی پر پدارتھ میں اپنا پن آ جانا بس وہ میتھا درشن ہے. اپنے میں پرایا پن کی کیوں نہیں کہتے, وہ تو گیان کے چھیتر میں چلی جاتی ہے. شردھا تو پر کو گرہن ہی نہیں کرتی, وہ تو کسی کو گرہن کرتی ہے تو سوا کے روپ میں ہی کرتی ہے. یعنی اسے خیال میں آ جائے کہ سوا نہیں ہے تو وہ ریجیکٹ کر دیتی, بات ہی نہیں کرتی ہے. وہ راگ ہے وہ تو چار گن کا کام ہے, آپ سمجھ گئے نا. تو کتنا سا سمیہ درشن ہے اپنا, جو ترکالی دھرو بھگوان آتما ہے دشی کا وشے, اس میں اپنا پن ہونا اس کا نام سمیہ درشن ہے, سمجھے نا. اور اس میں اپناپن نہ ہو کر کسی انیہ پدارتھ میں اپناپن ہونا اس کا نام متھیا درشن ہے. انیہ پدارتھ سے راگ ہونا وہ متھیا درشن نہیں ہے. اب وہ ڈھیر سارا پایا جاتا ہے بھائی چکرتی کے, اب اس سے ہمیں کیا دقت کھڑی ہوئی کہ جب جب ہم نے سمیہ درشنیوں کے پہچان کے چنہ بتائے تو ہم نے کسی بھی آدمی کو پکڑ لیا, اپنے گرودیو شری کو پکڑ لیا, تو سمجھ لیا کہ جو لنگی لگائے اور چدرا اوڑے ایسا ہوتا ہوگا سمجھ نشتی. اب ہمیں بس لنگی اور چدرا دکھتا ہے کیوں. ارے بھائی بے تو تنک واسی سادھو تھے جو ایسی بے دیش ان کی تھی اس وقت. اب وہ جب ان نے وہ چھوڑا اور انہیں دگمبا دھرم سچا لگا اور انہیں لگا کہ میں چوتھے ہندوستان سے اوپر کی بھومکا میں سمبھو ہی نہیں لگتا, میرے کو ہے ہی نہیں, تو انہوں نے کیا کرتے, سوٹ پینٹ پہننے لگتے کہ دھوتی کرتا پہننے لگتے تھے. تو انہوں نے کہ سادگی کاہے کو چھوڑو, اب وہ سادگی دھوتی کرتا پہن کے بھی اپنا سکتے تھے, تو انہوں نے زیادہ ماتھا نہیں مارا, اب وہ بنے رہے. لیکن انہوں نے یہ بہت سمجھداری کا کام کیا کہ اس بات کو پروتساہت نہیں کیا. ان کے یہاں جو برہمچاری ہوئے ان کو وہ چدرا مدرا اوڑھنے کی بات نہیں کہی, لنگی لگانے کی بات نہیں کہی. کیا گاندھی جی, وہ رام جی بھائی جیسے لوگ بھی دھوتی کرتا ٹوپی میں ہی رہے, جنہیں برہمچاری بد بھی دیتے تھے وہ قائم ہیں پنچ کلیانکوں میں, ان سے بھی کبھی نہیں کہا کہ تم اپنی ڈریس بدلو, ہے نا. جیسے برہمچاریوں کی فوج کھڑی ہو گئی نا اپنی نگمبر سماج میں, ایک ان کی ایک ڈریس نکی ہو گئی. کون کون تو اتنا لکھنا پڑا کہ ہمارے یہاں تین بھیس سے زیادہ بھیس ہی نہیں ہے. اس کا بھیس نہیں ہے اس کا مطلب کوئی بھی ڈریس پہنے اس سے کیا فرق پڑتا ہے نا. یہ سچی گھٹنا میں چھپا نہیں سکتا, حالانکہ اچھا نہیں لگتا کہنے میں, پھر بھی مانی چند جی صاحب چمرے تھے نا, تو وہ پہلے بیبی دھوتی پہنتے تھے, کرتا پہنتے تھے کھادی کا بالکل گیروا رنگ کا, ایسا ہوتا تھا وہ جو کھادی آتی ہے, اور وہ ٹوپی لگاتے تھے. اور برسوں تک ہمارا ان کا سماگم رہا, تتکرتا ہوتی رہی, سب کاج کرتی رہی, آتم خیاتی کو پنکتی پنکتی سے پڑھتے تھے, اور ہم لوگوں سے یہ آگرہ کرتے تھے کہ آپ پنکتی پنکتی سے نہیں پڑھتے ہو, اپروچن کرتے ہو تو آتم خیاتی پنکتی پنکتی سے نہیں پڑھتے ہو, گجا بہن کا ان کا یہ کہنا رہتا تھا. اور دس بیس برس تو ہمارے ساتھ ان کے ایسے کٹے, اور دس بیس برس بعد ہم نے تہمت لگا لیا, چدرا اوڑھ لیا, کر دیا, ہم کو بہت ان پتا لگا. تو بابو بھائی اور ہم نے آپس میں پہلے آپس میں بہت بچار کیا کہ یہ کیا ہے, انہیں کیوں کیا. پھر ہم نے بابو بھائی نے دونوں نے ان سے ایکانت میں بات کرنے کا نکی کیا, اور ہم نے ان سے کہا कि हम आपसे बहुत हाथ जोड़ के प्रार्थना करके ये जानना चाहते हैं कि आपकी जैसी पहले की परिणति थी और ये कपड़े बदलने के बाद की परिणति में आपको कोई अंतर दिखाई देता है? खुद को कुछ कुछ मामला आगे बढ़ा है क्या? क्या हमने संबंध दर्शन चारित्र ऐसी कुछ बात नहीं करी? मतलब पहले की जो परिणति थी और आज जो परिणति हुई है उसमें कोई फर्क आया है कि नहीं? नहीं, कुछ नहीं आया है। तुम्हें एक आय को बदले, कहा हमने उनसे प्रश्न किया, इसमें तकलीफ क्या? अच्छी बात है भैया, अच्छा शुद्ध सत्य दिन। तकलीफ ये है कि हमको ऐसा लगता है कि हम जैसे हैं ये जनता हमको इन कपड़ों में वैसा नहीं मानती है, और शायद इनसे मानने लग जाए तो इसका मतलब अंदर परिवर्तन कुछ नहीं हुआ, हम जगत की जो हमारी मान्यता थी उसमें परिवर्तन कराना चाहते हैं। तो इसी को तो ये कहते हैं, वो शब्द में प्रयोग नहीं करना चाहता हूं, मतलब हम क्या चाहते, असमय हम चाहते क्या है? जब इन कपड़ों में ही हमारी वैसी परिणति रह सकती है, वो उस परिणति उन कपड़ों के कारण रंजित मात्र भी उसमें परिवर्तन नहीं आता है, आगम में भी कहीं कोई उल्लेख नहीं है, तो फिर क्यों इसका? फिर हमने अलग उनकी पदवी बना ली, कोई उन्हें ब्रह्मचारी जी कहने लगा, कोई उन्हें भगत जी कहने लगा, कोई और नाम कहने लग गए, और कुछ लोग आजकल नया नाम चला है भैया, दीदी और भैया। अब वो दीदी कहते हैं तो अपने घर में जो अपनी बड़ी बहन होती है जिसे मैं दीदी कहते थे, वो नहीं होती है, वो दीदी का मतलब कुछ और होता है, हैं? और भैया कहते हैं ना अपने बुंदेलखंड में, तो हरेक को ही भैया कहते हैं ना, बड़े भैया, छोटे भैया, हैं? बहन जी तो हर श्रोता को भैया कहते थे, भैया ऐसा मत करो, भैया ऐसा मत करो, क्यों? अब भैया का आश्रय बदल गया, कुछ दिनों में अब हम लोगों को लोग भैया भी नहीं कह पाएंगे। यदि हमें भैया लिखेंगे, भैया हुकुमचंद, तो लोग समझेंगे तुम भैया कैसे हो, क्यों हुकुम भैया क्यों लगा तुमको? बहुत धर्म संकट है ये। अभी अभी क्या हुआ, एक दिन टीवी पर आ गया आचार्य महाराज डॉक्टर हुकुमचंद भारेल है। भाग्य से मैं मालिश कराता रहता हूं तो टीवी सुनता तो हूं, देख नहीं पाता, लेकिन उस दिन कोई वो मालिश करने वाला नहीं आया तो मैंने देखा था सारा, वो लिखा था मैंने, ये क्या हो गया? तो मैंने उसी वक्त फोन कराया उसे कि भैया जी आता नहीं तो लेना के देने पड़ जाएंगे। तो मैंने कैसे लिखा, तो उसे फोन किया तो वो कहता है इतना बढ़िया प्रवचन आता है, हम सुनते हैं और मुनियों के सबके सुनते हैं, और आप उनको सब बड़े बड़े विशेषण लगते हैं, आपको नहीं लगा, हमें अच्छा नहीं लगा, तो हमने लगा दिया। ये बोल रहा हूँ अभी टीवी पर जाएगा, ये चिंता मत करना। मैंने कहा भैया तेरे हाथ जोड़ते हैं, तू ऐसे मत लगाएगा। फिर मेरे कहा तेरे मत कर, नहीं मेरे को संतोष नहीं होता, मेरे को संतोष नहीं मानेगा, क्या करे? अब भी उसने डबल लक्ष्य रखा है, दो दफे आता है हुकुमचंद, हुकुमचंद काहे को लगाया, दो दफे काहे को लगाया, कोई मतलब नहीं था उसका। मेरे कहने का अर्थ ये है कि वो जगत में धीरे धीरे उनका अर्थ बदल जाता है। अब हम किसी को भैया कहना मुश्किल है, दीदी कहना मुश्किल है, क्योंकि हमने लिंग पाहुड़ हमारे पास मौजूद होने पर भी समझे ना, वो होने पर भी धीरे धीरे ये देश भी मान लो गए मान लेंगे आचार्यों की पंडितों की, तो फिर नहीं अपन को कुछ ऐसा नहीं है, अपन तो सूट पैंट पहनते नहीं है, सूट अच्छा नहीं, सूट नहीं करता इसलिए नहीं पहनते हैं, पहनने में अपन को कोई संकोच नहीं है, तो कोई पहनता है तो हम उसको नीचा नहीं समझते हैं। विद्वत्ता में विद्वान का निर्णय ज्ञान से होना चाहिए और संतों का निर्णय उनके चारित्र आचरण सब नहीं कहना चाहता हूं मैं, होना चाहिए, लेकिन हमने आज उनके निर्णय भी हम बाहरी चीजों से करने लग गए, इस बात से होना चाहिए ना। देखो इसे मेरा कोई संबंध कर्मोदय के निमित्त से इसका मेरा संयोग है, जब तक उसे चारित्र मोह का उदय आकर पीड़ा करता है, देखो अब पीड़ा करता है, चाहे तो मुहे का उदय आकर भाषा ऐसी है, और स्वयं बलहीन होने से पीड़ा सहन नहीं कर सकता। अब खुद स्वीकार कर रहे कि क्यों है, ये नहीं कि दूसरी वजह से, कर्म के उदय की वजह से, तो हमें इतनी अभी सामर्थ्य नहीं है। तब तक जैसे रोगी रोग की पीड़ा को सहन नहीं कर सकता, तब उसका औषधि इत्यादि द्वारा उपचार करता है। इसी प्रकार भोग सामग्री के द्वारा विषय रूप उपचार करता हुआ दिखाई देता है। ये रतन छाबड़ा ने लिखा है 250 वर्ष पहले। आजकल एक दवाई आती है, उसे वो बोलते हैं जिसके ज्यादा खाने से बाद में फिर और कोई दवाई काम नहीं करती है, स्टेरॉयड। स्टेरॉयड बोलते क्या बोलते हैं, स्टेरॉयड आती है ना कोई। अब जब बहुत ज्यादा तकलीफ होती है तो उसे दिया जाता है, तो उससे वो एकदम कोई भी बीमारी हो एकदम ठीक हो जाती है। लेकिन डॉक्टर कहते ज्यादा नहीं लेना, ये तो इमरजेंसी में ही इसका यूज करना, क्योंकि ज्यादा लोगे तो फिर भविष्य में कोई दवा काम नहीं करेगी, ऐसा कहते कि नहीं कहते। और भी आता है ज्यादा एंटीबायोटिक्स लोगे तो फिर बाद में एंटीबायोटिक्स काम नहीं करेंगे। फिर भी महीनों तक लेते हैं लोग, क्योंकि वो दुख नहीं सहा जाता। बिल्कुल जहर जान रहे हैं ना, इससे 10 बीमारियां खड़ी हो जाएंगी, इससे किडनी खराब हो जाएगी, इससे फेफड़े खराब हो जाएंगे, इससे ये हो जाएगा, सब उसमें लिखा रहता है, डॉक्टर भी बताता है, फिर भी वो लेता है। ऐसा समझ लेना है, यानी ऐसा स्टेरॉयड जैसा जहर समझता है। अब और बोलूंगा जरा अनुकूल, कि एक घी तेल खाने से बहुत वो हो जाता है, कोलेस्ट्रॉल वगैरह होने से हार्ट की तकलीफ होती है, ये सब होती है कि नहीं होती है। अब इतना पक्का जान रहे कि नहीं जान रहे, और उसके बिना कोई तकलीफ नहीं होती है, बहुत आराम रहता है, और दुबले हो जाना बहुत अच्छी बात है, ये सब जानते हैं कि नहीं जानते हैं। लेकिन फिर भी लोगों से घी नहीं छूटता, अरे क्या करें, हमने जिंदगी में कभी खाया ही नहीं, हमसे तो खपता ही नहीं, हमारे मन में तो कोर ही नहीं जाता। तो मत खाओ ना, कोर जाए दिखा लेना, लेकिन वो बिल्कुल जहर जान करके घी खाते हैं लोग के नहीं। मैंने नाममाला पढ़ी थी 10 वर्ष की उम्र में, 11 वर्ष का होऊंगा, उसमें घी के नाम आए थे, तो घी के नाम में लिखा था घृतम अमृतम विषम। नाममाला में अभी भी देखना तुम, हैं? हाँ, घृतम अमृतम विषम, घी का एक नाम अमृत है और एक नाम विष है, बोलो ऐसा लगा। हम गुरुजी से पूछे, गुरुजी ये क्या चक्कर है, बोले बेटा सीमा में खाओ तो अमृत है और सीमा से बाहर खाओ तो जहर है। टोडम जी ने उदाहरण दिया उसका कि कोई ऐसे खाना ही छोड़ दे तो मर जाएगा, और ज्यादा खाएगा, ज्यादा खाने के निषेध के लिए निषेध करते तो खाना ही छोड़ दे। देखो अब ऐसा तो जहर दुनिया में होता है कि खाने से मर जाए, लेकिन ऐसा जहर कि कम खाने से मरे नहीं और फायदा हो, और ज्यादा खाने से मर जाए, ऐसा जहर घी है, बोलो है? एक ट्रेवल जी ने पूजा में प्रयोग किया है शब्द का, इंद्रिय के भोगे मधुर विषम। अरे उसे छोड़ो, इतने मुझे मधुर विषम का समझाना है। क्या अर्थ है मधुर विषम का, इंद्रिय के भोग मीठे हैं और विषम है, जिसके समान है, ऐसा अर्थ नहीं है। हाँ, ये अर्थ नहीं है। तो क्या अर्थ है कि इंद्रिय के भोग मीठे विष के समान है, मीठे और विष हैं और विष के समान है नहीं, और नहीं, विष कई तरह के होते हैं, कड़वे भी होते हैं और मीठे भी होते हैं। तो जो कड़वा विष है, जो इष्ट नहीं लगता है, तो वो उसको आदमी आसानी से छोड़ सकता है, लेकिन जो बहुत मधुर लगता है तो उसको जानते हुए भी छोड़ना मुश्किल है, ख्याल नहीं ना। घी ऐसा ही विष है, कोई मधुर विष माने घी, جانتا ہے اس کے بس جائے گا تو مر جاؤں گا. لیکن میں نے ایسا ایسا لوگوں کو دیکھا ہے, ایک بہت تیاگی تپسوی, اتنے کریا کانڈی تھے, میرے رشتے دار ہی تھے, بہنوئی لگتے تھے دودھ کے, کہ بہت کریا کانڈی تھے. آپ سوچ نہیں سکتے ہیں اس سیما تک. وہ ہم کو مہابھرشٹ مانتے تھے, ہمیشہ اس بحث ہوتی رہتی تھی, اور باقی تتو کے معاملے میں تو سکارا اکثر بھینس برابر تھا, گھر میں ہی نا. لیکن امرود ہوتا نا, امرود کھانے سے ان کو ایسی الرجی ہو جاتی, سارا شریر سوج جاتا تھا, گلا رک جاتا تھا, ایسا ٹیڑھا ہو جاتا تھا, ایسا امرود کھانے سے الرجی تھی. لیکن جب امرود کا سیزن آتا تھا کیا, تو وہ سبزی منڈی قریب میں جاتے تھے, تو کبھی نہ کبھی امرود لائے بنا رہتے نہیں تھے, اور کھائے بنا بھی رہتے نہیں تھے, اور پھر سوجے پڑے رہتے تھے. تو لوگ کہتے تھے کیوں کیا ایسا, کہ نہیں میں تو قابل توجہ ہوں, متنا تو سب کو ایک دن ہے. ایسے بیراگی آپ نے بہت دیکھے ہوں گے, یہ گھی کھانے والے بھی ایسے ہوتے ہیں. جب تک ساکشات موت نہیں دیکھے تب تک نہیں چھوڑتے ہیں. ویسے ان سے کچھ کہو تو کھانے کو دوڑتے ہیں, چلاتے ہیں, ناراض ہوتے ہیں. آپ سمجھے نا, تو یہ ہے, ایسا ہو سکتا ہے نا لوک میں, تو سمے رشتی کے بھی ہو سکتا ہے. دیکھو جیسے روگی روگ کو پیڑا سہن نہیں کر سکتا, تب اس کا اوشدھی اتیادی کے دوارا اپچار کرتا ہے. اسی پرکار بھوگو بھوگ سامگری کے دوارا وشے روپ اپچار کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے, کنتو جیسے روگی روگ کو یا اوشدھی کو اچھا نہیں مانتا, اسی پرکار سمے رشتی چاہے تم ہوئے کہ ادے کو یا بھوگو بھوگ سامگری کو اچھا نہیں مانتا, اور نشچے سے تو گیاتتو کے کارن سمیک دشٹی براگی ادیاگت کرموں کو ماتر جان ہی لیتا ہے, ان کے پرتی اسے راگ دیش موہ نہیں ہے. اب وہ کھا رہا پی رہا, اتنا تیور راگ ہے, کتنا موت کی قیمت پہ کھا رہا, اور یہ کہہ رہے سے راگ دیش نہیں. اب کیسے, اب کیسے گلے اترے, یہ بات بولو. مانے موت کی قیمت پہ کھا رہا ہے, اور اب بنا راگ کے کھا رہا ہوگا, سب لوگ کہتے ہیں. یعنی میں یہ بات کہتا ہوں کہ ہم نے وہ کام سویکار کیا ہے کہ جس کے سمجھانے میں اتنی محنت ہوتی ہے پھر بھی سمجھا پاتے ہیں کہ نہیں, اس کے یدی ورودھ سمجھانا ہو تو ہزار گنی کم محنت میں بہت اچھی طرح سمجھایا جا سکتا ہے. اور اس میں ایک ایک ووٹ بہت مشکل سے ہمارے پکش میں آئے گا, اور اس میں ہزاروں ووٹ ایک ویاخیان میں ہم پیدا کر سکتے ہیں. کیا ایسا کیسے ہو سکتا, جہر سمجھ میں دیکھا لے, ایسا نہیں ہو, ایسا کوئی دنیا میں کوئی نہیں جہر سمجھ لے کھا لے, جہر سمجھ, یہ تو غلط بات ہے. اس کا مطلب وہ اچھا ہی مانتا ہے, وہ شردا اور چارتر کے موہ کے بیچ میں انتر نہیں سمجھتا. یہ انتر سمجھ میں نہیں آئے گا جب تک یہ گاتھائیں سمجھ میں نہیں آ سکتی, نہیں آ سکتی, سمے ساتھ سمجھ میں نہیں آ سکتا. اب جن کی سمجھ میں آ جاتا ہے بھاگیہ سے درواگیہ سے, جو بھی سمجھ لو گرودیو کے پرتاپ سے, اور ساس میں بھی لکھا نا سویم سے اتوا اپدیش سے, ہے نا, آ جاتا ہے, اس لیے دنیا انہیں پاگل دیکھنے لگتی ہے, دنیا کو بھی پاگل دیکھنے لگتے ہیں. دنیا سے ساتھ نہیں ان کا بیٹھتا. اس پرکار راگ دیش موہ کے بنا ہی ان کے پھل کو بھوگتا ہوا دکھائی دیتا ہے, تو بھی اس کے کرم کا آشرم نہیں ہوتا, کرماشرم کے بنا آگامی بندھ نہیں ہوتا. اجاگر کرم کو اپنا رس دے کر کھر ہی جاتے ہیں, کیونکہ ادے میں آنے کے بعد کرم کی ستا رہ ہی نہیں سکتی. دیکھ لو اب یہ ہو گیا نا نرجرا, کھر گئے تو نرجرا ہو گئی, اور بندھ ہے نہیں, کلیئر ہو گئی نا. نرجرا دربھ نرجرا کی بات کرتے ہیں, اس لیے لکھا نیچے یہ دربھ نرجرا کی بات ہے کہ بے کرم کھر گئے. اس پرکار اس کے نوین بندھ نہیں ہوتا, اجاگر کرم کی نرجرا ہو جانے سے اس کے کیول نرجرا ہی ہوئی, مانے بندھ پوروک نرجرا نہیں ہوئی. اجانی کے بندھ بھی ہوتا ہے اور نرجرا بھی ہوتی ہے, خیال میں آئی نا, اس لیے اس نرجرا کو نرجرا نہیں کہتے ہیں, ہے نا, اسے بندھ ہی کہتے ہیں, کیونکہ بندھ کو وہاں مکھتا دے دی, اور اس کو بندھ تو ہوا نہیں اور نرجرا ہو گئی. इसलिए सम्यक दृष्टि विरागी के भोगो भोग को निद्रा का ही निमित्त कहा जाता है। पूर्व कर्म के उदय में आकर उसका खिर जाना उसका द्रव्य खिर गया सो वह द्रव्य निर्जरा है। ये द्रव्य निर्जरा के स्वरूप कितना जयचंद जी छावड़ा की भी कितनी महिमा आएगी। देखो ये कितना पूरा लिखा, ये पूरा वाक्य जो लिखा है इससे भी अच्छी भाषा में अपन भी लिख सकते थे और चार पेज भी लिख सकते थे और एक पैरा में भी लिख सकते थे, लेकिन हमने नहीं किया। वो लोग उन जयचंद छावड़ा को ही कोट किया, कोई आरोप लगा देता कि आपने जयचंद छावड़ा की विषय ले लिया। अरे हम तो ये पहले ही कहते हैं कि हमने भगवान महावीर से लिया है, कुंद से लिया है, अमरचंद से लिया है, जयचंद से लिया है, सबसे लिया है, शुरू में ही लिख दिया है हम इंजन से लेंगे। तो हम वैसा भी लिखते तो भी कोई ऐसा देख के आरोप लगाता कि आपने जयचंद छावड़ा का से बात अपनी बात बना के लिख दी जयचंद छावड़ा की, तो हम तो कहते हमने महावीर की भी लिखी। हमारी हम कम कह रहे हमारी बात है ना, लेकिन हमने उन जयचंद छावड़ा को कोट किया, इसलिए किया कि कुछ अधिक लोग इसको स्वीकार कर लेंगे हमारी श्रद्धा से। तो जो लोग स्वीकार करेंगे वो तो स्वीकार कर ही लेंगे, और जो लोग हमारे के प्रति श्रद्धावान नहीं है और जयचंद छावड़ा के प्रति श्रद्धावान हैं तो उतने लोग और ज्यादा कर लेंगे, तो उसी बात से अधिक लाभ हो सकता है। वो टोडमल जी का बताए कौन सा कि जिस कारण से ढूंढारी में नहीं लिखा, तो क्या संस्कृत में नहीं लिखा, उसी कारण से ढूंढारी में नहीं लिखा। अधिकतम लोगों के पास पहुंचाने के उद्देश्य से हमने उनको ही पूरा तरह से कोट किया। और अब देखो कितना उसका लाभ हानि है। सब लोग कहते हैं, मैं अभय कुमार का नाम लेके कहता हूं, अभय कुमार जी ने मेरे से कहा, दादा आपने किया और तो ठीक है, सब बात मैं मानता हूं, बढ़िया है, आपका अधिकार है, कोई रोक नहीं सकता, किसी को ये नहीं कह सकता टीका लिखने से, लेकिन इससे जयचंद जी छावड़ा की टीका लुप्त नहीं हो जाएगी। ये सब लोग क्या है? पर हम जयचंद जी छावड़ा के भावार्थों में गुरुदेव इतनी महिमा गाते थे तो उनसे वंचित नहीं हो जाएगी जनता। तो मैं आपको बताता हूं, उनको भी बताया कि भाई जितने महत्वपूर्ण थे वो तो हमने रख ही लिए, इसलिए वंचित रह जाएगी बात तो रही नहीं। ये तो वो लोग वो भी पढ़ेंगे, इसे भी पढ़ेंगे, जो स्वाध्यायी हैं इतनी बड़ी जिंदगी पड़ी है तो सभी पढ़ेंगे, क्यों नहीं पढ़ेंगे। इससे वो खत्म हो जाएगी, उससे ये खत्म हो जाएगी, ऐसी बातें क्यों करते हो। और दूसरा हमने मूल बात तो दे ही दी है, और तीसरी बात यह है कि इतनी महिमा जब इसमें से पढ़ेंगे जयचंद जी छावड़ा की तो उन्हें उनकी किताब पढ़ने का तीव्र भाव आएगा, हम उनकी पढ़ें पूरी। इसलिए जो उसकी विरोध करने वाली बात नहीं है, बल्कि उसी की टीका को भी और आगे बढ़ाने वाली बात है। और ये हमें आप लोगों को भी बतानी पड़ती है जब प्रकरण आता है तब, क्योंकि वो ऐसे प्रचार के शिकार होते हैं ना, ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, ऐसे हो गया। अभी समय तो हो गया, मैं जानता हूं 2 मिनट ज्यादा हो गए, फिर भी एक बात मैं और कहूंगा। जब मैंने बालभूत पाठमालाएं विद्रा विज्ञान पाठमालाएं लिखी तो विद्रा विज्ञान पाठमाला भाग एक में जयचंद जी छावड़ा की 12 भावना रखी ना। और वो पहले चलती थी भुजादास जी की, राजा राणा छत्रपति भातन की रचना है। तो बहुत लोग कहते क्यों बदली, तो मैं अपने भाषणों में समझाता था क्यों बदली, उसमें और इसमें क्या फर्क है। तो मुझसे फूलचंद जी सिद्धांत शास्त्री ने कहा कि आप क्या राजा राणा छत्रपति को गायब कर देना चाहते हैं, ऐसा चिंतन गायब कर। मैंने कहा हम जयचंद जी छावड़ा की 12 भावना बहुत मार्मिक है, और जो 12 भावनाओं का एंगल चलता है उससे कुछ हटकर है, और जो दूसरी जगह एंगल नहीं मिलता है, तो हम उस एंगल को और जयचंद जी छावड़ा की 12 भावनाओं को बाहर लाना चाहते हैं, आप किसी को हटाना चाहते हैं, बात क्यों कहते हो, क्यों कोई क्या तुम इसको चुनाव वोट दे रहे हो, तुम्हें इस प्रधानमंत्री को हटाना था, हम क्या हटाना, हम तो जिसको लाना चाहते हैं, अब उसका स्वरूप ही ऐसा है तो हम हटाना मटाना नहीं चाहते किसी को। फिर तो उन्होंने दूसरा तर्क था, तो वो सब सबके गले लगी हुई है, सबको याद है, प्रसिद्ध है, सब स्वीकृत हो जाती है 1 सेकंड में। अब तुम्हारी इसमें मीन में एक निकालेंगे लोग, निकालने दो ना, ये भी प्रसिद्ध हो जाएगी कैसे, अब हमारी पाठमालाओं में थी वो, इसलिए वो प्रसिद्ध हो गई थी। अब ये पाठमालाएं जो चलेंगी वे बंद हो जाएंगी तो ये प्रसिद्ध हो जाएगी। ये सब भोगे हुए हैं और ये बड़े बड़े लोगों की बात में नाम लेके बता रहा हूं मैं। ये ऐसा तंत्र चलता है, उनने देश से किया ऐसा मैं नहीं कहता हूं ना, मैं ऐसा मानता हूं, लेकिन उनके दिमाग में ये बात आती है। तो ये बात आती है दिमाग में तो उसे हमारी ड्यूटी है कि हम उसका स्पष्टीकरण करें कि ये तर्कसंगत है, ये गलत बात नहीं है।